بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا، اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے. کما خلقناکم اول مرت، جیسے پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی بار، پہلی مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ کے پاس تو سب کو اکیلے اکیلے جانا ہے. یہ حقیقت سب کے لیے، ان کے لیے بھی ہے اور باقی جتنے بھی پڑھنے والے ہیں وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو ویسے ہی اکیلے پہنچنا ہے جیسے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا. پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا تھا؟ کہ دنیا میں انسان آتا ہے تو جو مرد ہوتے ہیں بے ختنہ ہوتے ہیں، لڑکے پتنے کے بغیر ہوتے ہیں. اسی طرح بالکل برہنہ، کوئی کپڑے نہیں لے کر آئے ساتھ، کوئی جائیدادیں نہیں لے کر آئے ساتھ، کوئی ڈگریاں نہیں لے کر آئے ساتھ، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ بالکل چلے آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ننگے ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے اور خالی ہاتھ ہوں گے، کچھ بھی دنیا کی چیزوں میں سے ساتھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن یاد دلایا کہ اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اکیلے اکیلے پہنچنا ہے میرے پاس، جیسے پہلی دفعہ تم دنیا میں آئے تھے، کچھ لے کر نہیں آئے تھے. اور یہ بات انسان بھولے رہتا ہے ساری زندگی تاکہ جاننے کا وقت آ جاتا ہے. جانتے ہم سب ہیں یہ بات، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے. آپ اتنے مردے دفنائے، کبھی دیکھا ہو کسی نے کوئی مردے اپنے ساتھ کوئی جولری لے کے جا رہے ہیں، کوئی گھروں کے کاغذات لے کے جا رہے ہیں، کوئی چیزیں لے کے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو فرمایا وہ ترک تم ماں خبر نہ کم ورا ضروری کم، چھوڑ آئے تم جو دیا ہم نے تم کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے. میں نے آپ کو بتایا نا، خبر اس چیز کو بھی کہتے ہیں وہ قیمتی چیز جس پہ حفاظت کی جائے، جس کی نگرانی کی جائے. اور وہ کیا چیزیں ہیں تم سوچیں، جن کی ہم بڑی نگرانی کرتے ہیں، بڑی حفاظت کرتے ہیں. ہمارے زیورات، ہماری تجوریاں، ہمارے لاک، جن کو ہم تالوں میں بند کر کر کے رکھتے ہیں. بعض لوگ تو عام چیزوں کو بھی، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی تالا ہی لگا کے رکھتے ہیں، تو بڑی سنبھال کی چیزوں کو رکھتے ہیں، نہیں کوئی کھا نہ لے. تو وہ خبل ہیں جس کی بڑی حفاظت کی جائے. وہ جن کی بڑی حفاظت کرتے تھے ان کو لائے نہیں ساتھ، تو وہ کہاں گئی چیزیں؟ دیکھیں انسان کتنی ساری چیزوں کے لیے اس طرح سے سوچتا ہے کہ میں ہی ہوں، میں اپنے پوزیشن میں رکھوں گی، میں کسی کو دوں گی نہیں، میری چیز ہے، میرے خزانے، میں ان کی مالک، کوئی اور نہ لے لے. اور وہ دیکھو کیسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے انہی چیزوں کو جن کے اوپر اس کا اتنا دل لگا ہوتا ہے، جن کے ساتھ اس کی فکریں لگی ہوتی ہیں کہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، کیسے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ گئے نا تم ہمارے پاس اکیلے ہی، کہاں رہ گئی وہ چیزیں؟ ایک اول ریپنگ کو بھی کہتے ہیں، ریپ یعنی کور، جن کورز میں تم تھے، یعنی جن نعمتوں میں تم ریپ تھے، جن چیزوں جو اتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بھی آسائشیں، جو بھی نعمتیں، جو کچھ بھی دیا ہوا تھا، ان نعمتوں کے اندر آپ کورڈ ہوتے ہیں، وہ سب بھی چھوڑا ہے. وہ بینک بیلنس کہاں گئے؟ وہ پلاٹوں کے پیپرز کہاں گئے؟ وہ زمینیں کہاں گئی؟ وہ ڈگریاں کہاں گئی؟ یہی ہے نا چیزیں. انسان اس زندگی کے ساتھ سوچتا ہے یہ کبھی مجھ سے دور نہیں ہوں گی، یہ میرے پاس ہی رہیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل میں مَا عِندَكُمْ يَنفِدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے نا اس میں تو ختم ہی ہو جانا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا، سب کچھ ہی پیچھے رہ جانا. کیوں چمٹا چمٹا کے رکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ کیوں انہی کے ساتھ اپنا سارا وقت لگا رہے ہیں جن کو چھوڑ جانا ہے؟ ان کو سجانے کی مصروفیت، ان کو رکھنے کی مصروفیت، وہ کاروبار جن کے لیے زندگیاں لگائی ہیں، وہ ڈگریاں جن کے لیے جوانیاں گلا دی، وہ پیسہ جس کے لیے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا. دیکھیں کئی چیزیں ضرورت ہیں، بے شک وہ ضرورت ہیں، کام کاروبار بھی ضرورت ہیں، گھر بھی ضرورت ہیں، سب چیزیں یہ ضروریات، یہ زندگی ہیں، कोई हरज नहीं है कि अगर इंसान इनके अंदर वक्त लगाए मगर अपनी सारी जिंदगी इसी के पीछे लगा दे और उसको याद ही ना आए कि ये मैंने छोड़ जाना है। जिस चीज को छोड़ जाना होता है ना इंसान का, फिर बहुत ज्यादा उसमें दिल नहीं लगता। जिस चीज को भी आपने छोड़ जाना, आप फिर दिल उठना शुरू जाता है उसे, अच्छा ये तो फिर रह ही जानी, अच्छा ये फिर छोड़ ही जानी। आप मसलन किसी होटल में, आप उसकी चीजों को तो नहीं संभाल संभाल के रखते रहते, तो आपको पता है होटल का कमरा है, बस थोड़ी देर में मैंने चले जाना, खुद ही पीछे वाले संभालते रहेंगे, मुझे क्या इतनी जरूरत, कुछ फिक्र करता है उन चीजों की। फिर आप देखें दुनिया में जो महफिलें हैं इनमें बैठ के हम गप्पे मारते हैं, कह के लगाते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता, लेकिन उस दिन वो महफिलें भी सारी दुनिया में रह गई। ये भी रैप्ड है ना, जिसमें हम रैप्ड है। मुझे एक स्टूडेंट याद आई, अल्लाह ताला उनको जन्नत अल-फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो बीमार थी, बहुत बड़ी डॉक्टर थी, तो मुझे कहती कि सुभान अल्लाह उनकी बातें उस वक्त इतनी विजडम की हो गई थी ना, कहती हैं कि मैं महफिलों की जान होती थी, अगर मैं नहीं आती थी ना तो लोग कहते थे वो कहाँ है, नाम ले लेके पूछते थे कि इसके बगैर मजा नहीं आता, इतना वो फन थी अपनी मजलिसों। आज उनके बगैर मजलिसें चल रही, कोई शायद उनका नाम भी ना लेता। तो देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला वो बात समझा रहा है जो इंसान को बड़ी देर बाद समझ आती है। वो कहते हैं ना जिंदगी की समझ उस वक्त आई जब जिंदगी खत्म हो गई। तो हमें भी अक्सर जब जिंदगी चल रही होती है ना, इतनी हसल बसल है, इतनी मसरूफियत है, समझ नहीं आती। जब खत्म होने लगती है ना तब समझ आती है, पीछे मुड़ के देखते क्या रह गया मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं। मैंने किधर जवानी गुला दी, मैंने किधर अपना वक्त लगा दिया, ये इन ठिकरियों के पीछे, इसके पीछे वो कीमती दिन गवा दिए। अल्लाह अकबर। तो उस दिन उस भीड़ में कितनी दुनिया होगी सोचे, इमेजिन करें आप हाज पे देखते हैं कितने लोग होते हैं, इतना हजूम होता है। इमेजिन करें कि हशर के मैदान में कितना रश होगा, उस रश में भी हर कोई अकेला होगा, फुरादा, और अल्लाह ताला के सामने भी अकेले ही पेश होना होगा। नाम लिया जाएगा, फलां बिनते फलां आ जाए, आपकी बारी है। फिर सोचे अभी सुन के भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो क्या वक्त होगा कि मेरा नाम लिया जाएगा, कि मैंने किसके सामने पेश होना, किसी इमिग्रेशन वाले के सामने नहीं, किसी दुनिया की अदालत में नहीं, किसी जज के सामने, किसी वकील के सामने, किसी और किसी पेशी में नहीं पेश होना, अल्लाह की अदालत में पेश होना। अल्लाह अकबर। और अब मेरे लिए क्या फैसला होगा मुझे नहीं पता, क्या कहा जाएगा मेरे लिए, एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नम है और आगे मेरे अमल है। फिर ये कितनी बड़ी फिक्र है लगाने की ना, ये तो कुरान हमें झंझोड़ देता है, जगा देता है, वरना हम तो लगे हुए अपनी धुन में, होश आता ही नहीं। वो जिस वक्त हमारे हाथ पैर बिल्कुल ही इस काबिल नहीं रहेंगे, इतने वीक हो जाएंगे, बस बैठे ही रहेंगे, जाहिर है फिर अगर इतनी जिंदगी रही तो तब फिर जाके याद आएगा कि अच्छा अब कुछ करने के तो काबिल नहीं रहे, तो अब सोच आएगी कि क्या किया। जब तक जिस्म चल रहा है, जवानी है, हिम्मत है, सेहत है, भागे फिर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर की मसरूफियत, उधर की मसरूफियत, ये करना है, वो करना है, मेरे पास टाइम नहीं, सोचने का भी टाइम नहीं है, वाकई सोचने का टाइम नहीं। बैठते भी हैं तो वो ही फिक्रें, और यहाँ पर थक के सो जाते हैं, फिर उठ के फिर वही चीजें शुरू कर देते हैं। वो कैसा दिन होगा, अल्लाह के सामने अकेले ही पेश होना होगा। कहाँ गए वो दोस्त अहबाब, बच्चे, घर वाले, हमसाए, कहाँ गए वो सब हमदर्द, वो किधर है, कोई कहीं किसी की नजरों में कोई आशनाई नजर नहीं आएगी, कोई किसी के अंदर कोई अपनायत, कोई हमदर्दी, कोई वेलकमिंग चीज ये नजर नहीं आएगी। सब दिल का हाल क्या होगा, गम से पटा जा रहा होगा। कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, क्यों ना आए, हर इंसान का हाल ये होगा कि बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा, इतना शदीद गम होगा। तो ये पहला मंजर जो यहाँ पे बताया गया ना कि अकेले तुम्हें आना है हमारे पास, इसको भूलना नहीं, इतनी परेशान कुन बात है ना कि वो जो इतनी दुनिया खड़ी है उसमें भी मैं अकेला, सिर्फ तन्हाई जो है ना इंसान के लिए वो बड़ा आजाद है। इंसान कहीं किसी भी मुश्किल में अपने आप को लोनली फील करे ना, कहते ना कि देखो हम किसी की मुश्किल तो नहीं आसान कर सकते, मगर किसी को दो बोल हमदर्दी के बोल देते हैं तो उसको तसल्ली हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, हम किसी बीमार के पास क्यों इबादत करने जाते हैं, कोई उसकी बीमारी थोड़ी हम दूर कर सकते, बस उसको जो तसल्ली के दो बोल बोल देते हैं उससे ही बेचारे का हौसला बढ़ जाता है। कोई और किसी परेशानी में हम उसके जाके जरा तसल्ली दे देते हैं, वो बेचारा थोड़ा हिम्मत करके खड़ा होने के काबिल हो जाता है। वो कैसा मंजर होगा जिसमें कोई ये कहने वाला नहीं है कि फिक्र ना करो, यू विल बी ओके। कहां से बना हिसाब है ये? हाँ, जिसने बहुत कुछ बना लिया वो भी जीरो, जिसने कुछ ना बनाया वो भी जीरो, वो तो था ही जीरो। जिसने महल खड़े कर लिए उसके भी जीरो हो गए। अल्लाह अकबर। और उसके बाद उतनी जमीन एक बादशाह को भी मिलनी है और उतनी ही एक फकीर को मिलनी। कब्रिस्तान में आप देखेंगे बादशाहों की कब्रें को बहुत बड़ी नहीं है, फकीरों की कब्रें छोटी नहीं है, सबकी बराबर। हाँ, अंदर उनके क्या है वो उनके अमल पे है। बड़ी जायदादों वालों ने क्या सारी जायदादों में अपने लिए बड़ी कब्रें बना दी? नहीं, वही कब्रिस्तान सबको मिलता है, उनको तो अपनी जमीनों पे भी कब्र नहीं नसीब होती, वो जमीनें भी कोई और ले जाता है। अपने घरों में भी रहना नसीब नहीं होता कि उनके घर में उनकी कब्र बना दी जाए, जो महल जैसे घर खड़े किए। कितनी बड़ी हकीकत है ना, अगर याद नहीं रहती, याद नहीं रहती हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया वो फना हो गया, जो तूने पहन लिया वो पुराना हो गया जाया हो गया, या तो तूने खैरात जो तूने खैरात कर दिया वो बाकी रहा, इसके सिवा जो कुछ है उसको तू औरों के लिए छोड़ गया। तो फिर देख लें हम कि कौन सी चीजें हैं जो हम साथ ले जा सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जो यहाँ छोड़ने वाली, जो यहीं रह जाएंगी। कल हमारी वापसी अगर होनी हो तो हमारे पास क्या चीजें हैं? कुछ कीमती चीजें रख ली हैं? कुछ ऐसी चीज है जो आखिरत के बाजार में उसकी कोई कीमत लग सके? सभी ठीकरियां ही जमा की जो यहीं छोड़ जानी। अल्लाह अकबर।